نا پانڈے راجمل جی اور کبیور بناسی داس جی نے اکت چھند کا جو بھاو بتایا ہے اس کے انشیلن کرنے پر نگمانکت بندو دھیان میں آتے ہیں. مول چھند میں تو ایک نئے سے بندھا اور دوسرے نئے سے ابندھ ماتر اتنا ہی لکھا ہے, نئوں کے ناموں کا الیکھ نہیں کیا ہے. پر پانڈے راجمل جی نئوں کا الیکھ پریارارتھک نئے اور دیویارتھک نئوں کے روپ میں کرتے ہیں اور بنارسی داس جی ویوہار اور نشچے نئوں کے روپ میں کرتے ہیں. اس کی چرچا پر سب وستار سے کر چکے ہیں, یہ تو کنکلوژن ہے نا. کیا انتر ہے دوسرا, راجمل جی پکشپات کا سروپ اسپشٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وستو میں انیک روپ کلپنا کرنا ہی پکشپات ہے. وستو ماتر کا سواد آنے پر اکت کلپنا بلین ہو جاتی ہے, آتمانوبھو ہونے پر وکلپ سماپت ہو جاتے ہیں. اسی اوستھا کا نام نئے پکشاتیت اوستھا ہے. اس پرکار آتمانوبھوی ہی نئے پکشاتیت ہے اور تتو بھی ہے. مانے انہوں نے دو دو جو پکش ہیں نا ان پہ اتنا زور نہیں دیا, بس ایک پکش ہے اور دوسرے میں پکشاتیت ہے. بنارسی داس جی اس بات پر بجن دیتے ہیں کہ جو ویکتی دونوں نئوں کے کتھنوں کے مرم کو سمجھتا ہے, ان کے ابھیپرائے کو جانتا ہے, پروجن کو پہچانتا ہے, وہی گیان ونت ہے, وہی تتو ویدی ہے. تو تتو ویدی شبد آیا نا, اس کا ارتھ ہے اس نے ہی تتو کو پراپت کیا ہے. اکت تین بندوؤں میں پرتھم بندو کے سندرو میں بات یہ ہے کہ دیویارتھک اور پریارتھک نئے مولتہ آگم کے نئے ہیں اور نشچے ویوہار ادھیاتم کے. یدپی یہ دونوں شیلیاں ایک دم الگ الگ ہیں تتھاپ ایک دوسرے کی ورودھی نہیں اپٹو پورک ہیں. پرستت پرکرن میں دونوں ہی شیلیاں سہج ہی گھٹت ہو جاتی ہیں. آتما میں کرم بدھ ہیں یہ کتھن پریائے دشٹی سے کیا گیا کتھن ہونے سے پریارتھک نئے کا کتھن ہے, اور آتما کرموں کے سنیوگ کا کتھن ہونے سے دو دربیوں کے بیچ سنیوگ بتانے والا اسد بھوت ویوہار نئے کا بھی کتھن ہے. دونوں آ گیا نا. اسی پرکار آتما میں کرم ابدھ ہے یہ کتھن دربی دشٹی سے کیا گیا ہونے سے دیویارتھک نئے کا کتھن ہے, اور سنیوگ کو اسویکار کر دینے والا کتھن ہونے سے شدھ سوبھاو کے پرتیپادک نشچے نئے کا کتھن ہے. اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دونوں ہی شیلیاں سہج بھاو سے گھٹت ہو رہی ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کلشٹیکاکار پانڈے راجمل جی سنیوگ کا کتھن کرنے والے اسد بھوت ویوہار نئے کو نئے ہی نہیں مانتے ہیں. جو اس بات سے اپرچت ہوں انہیں پرم بھاو پرکاشک نئے چکر پنچادھیائی کے انوسار ویوہار نئے کے بھید پربھید پرکرن کا ادھیئن کرنا چاہیے. ہاں تو سنیوگی کتھن کرنے والے اسد بھوت ویوہار نئے کو نیا بھاس ماننے والے پانڈے راجمل جی یہاں آتما میں کرم بدھ ہے اس سنیوگی کتھن کو ویوہار نئے کا کتھن کیسے کہہ سکتے تھے. یہ سب باتیں اپن کر چکے ہیں. یہی کارن ہے کہ انہوں نے یہاں ایک نئے شبد کا ارتھ پریارتھک نئے اور دوسرے نئے کا ارتھ دیویارتھک نئے کیا ہے. دوسرے وے ویوہار اور پریارتھک کو پریائے باتی جیسا ہی مانتے ہیں, جیسا کہ نمنانکر کتھن سے اسپشٹ ہے. پریارتھک نیا اتی یدی با ویوہار ایو نامیتی ایک ارتھو اسماد ہے سروپیوپچار ماترتا سیات. پریارتھک نئے کہو یا ویوہار نئے کہو یہ دونوں ایک ہی ارتھ ہے, کیونکہ اس نئے کے وشے میں جتنا بھی ویوہار ہوتا ہے वह सब उपचार मात्र है। आप देखेंगे कि इनके जो भी डिसीजन होते हैं, जो इनकी वो नैव संबंधी मान्यता है उसके आधार पर होते हैं और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हम वक्ताओं से ऐसी गलती होती है कि जब भी कहीं देखते हैं तो फटाफट वो उद्धृत कर देते हैं अपने पक्ष के पोषण के लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं ये पंचाध्यायी का कथन है कि पंचाध्यायी के अलावा और शास्त्रों का कथन है। तो पंचाध्यायी में मिलेगा ना उसे तो पर्यार्थिक नए व्यवहार ही है। अब वो व्यवहार जिसको हम असद्भूत कहते हैं वो मानते ही नहीं है, व्यवहार में पर्याय से ही है तो वे तो उसे मानते नहीं, सिर्फ पर्याय तक ही जाते हैं, इसलिए उनको वो अनुकूल पड़ जाता है। मामलू समझ रहे हैं कि नहीं? वो पर्याय से नए व्यवहार में है कि पंचाध्यायी कार्य को अनुकूल क्यों पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि वो संयोग वाला दो द्रव्यों के बीच के संयोग वाले नए को नए ही नहीं मानते हैं, पर्याय के आश्रय से कथन करने वाले को ही पर्याय से नए मानते हैं, व्यवहार नए मानते हैं, इसलिए उन्हें समस्या नहीं है और आगम में तो समस्या ही समस्या है। असद्भूत व्यवहार नए भी तो व्यवहार नए है ना, तो उसको फिर हम पर्याय नए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दो द्रव्यों के संयोग का नाम है। ऐसे कई जगह ऐसी तकलीफें आती हैं, खासकर गुरुदेव के प्रचनों में भी आपको कभी कभी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा दो दफे कहा है तो एक दफे फिर कहता हूं आपके ज्ञान में रहे, इसलिए विद्यार्थी बदलते रहते ना। गुरुदेव श्री जब 19वीं बार या 18वीं बार प्रचन कर रहे थे समय सार पर, तो जब 11वीं गाथा आई जिसमें भूतार्थ और भूतार्थ का आया, तो वहां जो निश्चय व्यवहार की उनने परिचय परिभाषाएं दी वो सब पंचाध्यायी के लिए, क्योंकि सर पंचाध्यायी का स्वाध्याय भी साथ में कर रहे होंगे और जो स्वाध्याय में चलता है वो आए बिना रहता नहीं है प्रचन में। देखो टोडरमल जी की बात बताता हूं मैं, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो 7वां अध्याय लिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने प्रसादसिद्धि उपाय की टीका लिखना शुरू की। अरे मैंने निष्कर्ष निकाला है, देखो दोनों ही ग्रंथ अधूरे रह गए, वो टीका भी अधूरी रह गई और ये भी अधूरा रह गया। इसका मतलब यह है कि एक समय दोनों लिखे जा रहे थे, जब उनका अवसान आया तब दोनों लिखे जा रहे थे एक साथ। तो उसका जो मंगलाचरण है प्रसादसिद्धि उपाय का, उसमें 7वें अध्याय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अब बताइए नहीं तो उसमें क्या जरूरत थी कि को निश्चय से आत्मा को शुद्धमान भई है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। ये जो छंद है बिल्कुल 7वां अध्याय को उनने 4 पंक्तियों में बांध दिया। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला अपनी पीएचडी की किताब में, ये दोनों का लेखन एक समय हो रहा था। आप समझ गए ना? तो ऐसे ही जब गुरुदेव जी सब पंचाध्यायी का स्वाध्याय कर रहे होंगे, जब इनकी आई तो उन्होंने वो पंचाध्यायी वाले ने कह दिया, और उसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ भी जो पंचाध्यायी में है वो कर दिया उन्होंने। और शुरू के 18 प्रवचनों में वो बात अलग है, वो सर। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि वो हमारे खूब चलती थी, हम तो 19वें प्रवचन में तो हम लोग भी थे ना शामिल, तो वो ये बोलते थे बुद्धिपूर्वक माने जो हमारे ज्ञान का गेय बन जाए वो बुद्धिपूर्वक राग, जो राग हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक राग। और अपने लोग में यही कहते हैं हमें सोच समझ के करो तुम तो बुद्धिपूर्वक, और ऐसा हमने तो आपको धक्का देने की सोची नहीं लेकिन एकदम धक्का लग गया, वो बुद्धिपूर्वक ऐसे व्यस्त करते थे ना सर। तो उस वक्त नया अर्थ बहुत अटपटा लगा, अच्छा लगा लोगों को। अब वो कृषि का निकाल निकाल के बताते, तो उससे क्या हुआ कि एक बाबू भाई जी के मामा जी थे, रमनलाल नाम का नाम था, और वो अध्यापक थे, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो गए थे। वो बाबू भाई की उम्र के ही थे, मामा जरूर थे लेकिन बाबू भाई की उम्र के थे। तो बाबू भाई ने उनसे कहा, मामा अब आप तुम क्या करोगे? तो तुम गुरुदेव के प्रजनों को सीढ़ी पैसे उतार करके लिखो, मुझे जो परमागम सब कहना उनका प्रजन रत्नाकर वो उनसे तैयार करवा रहे। तो उनने वो ग्यारहवीं गाथा का वे नए पढ़े, और अब वो तो अपने को उसका बहुत विशेषज्ञ मानने लग गए कि गुरुदेव के प्रजन लिखे, और उन्होंने 11-11 प्रजन के भाग छप गए, और निरंतर उनका 10-5 साल उसमें निकल गए, तो उन्हें बहुत अध्ययन भी उनका हो ही गया होगा ना। मैं गया यहां से गुजरात में, हिम्मतनगर में व्याख्यान कर रहा था, तो ये निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप जो अपना है ना, नए चक्र में और समय सार में, वो मैं समझा रहा था। तो एकदम 20 सभा में बहुत शांत प्रकृति के थे वो, अब कल्पना के बाहर, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी, एकदम गलत है ऐसा बोले, क्या हो गया मामा को? एकदम गलत है। उसकी परिभाषा तो ये उन्होंने भरा फटाफट पंचाध्याय की परिभाषाएं बोल दी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की जो आपको समझा रहा हूं ऐसे ही, कि भाई वो ऐसा ऐसा हुआ है, आप गुरुदेव के आपने पढ़े हैं वही, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नए चक्र के पूरा पढ़ो आप, तो आपको सारी बात ख्याल में आएगी। तुम्हारे तो दो ही बातें चलती थी ना, कि ये जो बात नए चक्र में लिखी गई है वो गुरुदेव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, यदि ये नहीं है तो वो बेकार है, नए चक्र बेकार है, क्या समझ गए? मैं कि भाई पढ़ो एक दफे, देखो उसे शांति से, पंचाध्यायी के नए भी उसमें लिखे हैं, ये भी नए लिखे हैं, आप सुनिए ना। अब वो किसकी इतनी हिम्मत थी कि गुरुदेव ने जो लिखे वहां उनके बारे में अपेक्षा समझा सके, मतलब उनके बारे में विरोध करने की तो बातें ही लिखे कहां है, विरोध का सवाल ही नहीं था, लेकिन ये यहां कैसे लिखे गए? अब आप लोग जितने समझदार हैं अपनी तरफ हो जाएंगे, तो जरा उसको समझना कि जहां वो 27वीं गाथा आ रही है बिल्कुल पास में, जहां जिसमें लिखा है कि व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदी कलु इक्को, कि व्यवहार नय कहता है कि जीवो शरीर एक है, और निश्चय नहीं कहता कदा भी एक नहीं, तो कितना कुंद कुंद की मूल गाथा में आ जाए, हम कैसे उड़ा सकते हैं उनसे? और कई गाथाएं जैसे नगर को लुट, रास्ते को लुटता देखकर, हम कहते रास्ता लुटना, नागरिक को लुटता देखकर, राहगीर को लुटता देखकर, हम ये कहते हैं कि रास्ता लुटता है, अब कितने देश सब वही है ना, जैसे नगर की व्यवस्था देखकर राजा का हम ग्रहण करते हैं, सेना लड़ती है और राजा को कितने उदाहरण दे दे के कुंद कुंद ने वो असदूत व्यवहार नहीं किए का कथन किया है समय साल ने सारा दिनी। अब वे हमारे जो बड़े बड़े विद्वान नाम रख रखाते हैं, ब्राह्मण मानना आप, वे उस बात को सुनने तैयार नहीं, उसे देखने तैयार नहीं, और जब वो पढ़ेंगे तो चुपचाप से पढ़ के सुना देंगे, और जब ये पढ़ेंगे ये पढ़ जाएंगे, लेकिन दोनों का कंपेरिजन करो ना, जैसे हमने निकाल के नंबर नंबर दिए कि एक 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 फर्क है, दूसरा फर्क है, तीसरा फर्क है, और फिर इसमें हमने सामंजस्य स्थापित किया है? उन्हें इसकी जरूरत है क्या नहीं इसे पढ़ने की? खुद नहीं किया तो पढ़ने तो उनको तो आए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्या क्या जैसे पागल में सवार हो गया, ऐसा नहीं लगता है? तो इन दोनों जो शैलियां हैं इनका बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप समय सार का मर्म समझ सकेंगे और प्रयोजन सार और सबके मर्म समझ सकेंगे। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और समझने लायक है, वो ये है कि व्याकरण और न्याय ये कैसे लिखे जाते हैं। दुनिया में पहले प्रचलित होते हैं, फिर वैयाकरण दुनिया में देख देख के सुन सुन करके उन रूपों को इकट्ठा करता है और उनके अनुसार नियम बनाता है। वो नियम वास्तव में बनाता नहीं है, जिन नियमों से भाषा चल रही है उनको जानकर और व्यवस्थित करके रख देता है, और जो जहां जहां उसे ये दिक्कत आती है कि ये शब्द भी चलता है और ये शब्द भी चलता है क्या, तो वो कि विकल्प से ऐसा भी बनता है, हैं? समझे ना, उनको वो वैकल्पिक रूप मान करके ये समझता है। आप संस्कृत में जानते हैं ना, भ्याम 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 तीन दफे आ जाता है, चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में तृतीया तीन में आ जाता है ना। तो अभ्रंश ने और प्राकृत ने तो यही कह दिया कि इसमें चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन होता ही नहीं है, और अपने पंचमी में तृतीया से काम चलाते हैं, और वो कहते हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं इसमें तीनों में होता है। अब इसका अर्थ क्या है, माने उन तीनों में एक सा प्रयोग होता है। अभी आप देखें अभ्रंश भाषा में द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी का प्रयोग एक ही जैसा होता है, आया नहीं समझ में। वहां पर भी जैसे मुझको तो वो मेरे इसके अर्थ में भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी के एक से प्रयोग होते हैं। तो वे कह रहे हैं द्वितीया होती है, चतुर्थी षष्ठी होती ही नहीं, और कहीं कहेंगे तीनों में एक से प्रयोग है, ऐसे वैयाकरण लिखते रहते हैं उन रूपों को, समझ रहे ना। इसलिए जो डबल एक से मिलते हैं उसका मतलब समझ रहे आप क्या है, और एक में डबल डबल मिलते हैं, रमा भी और रामई, रामई में भिस को एस हो गया और रमा भी में नहीं हुआ। इतनी रचना को भी पढ़ते हो ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं काय को कहूं होता ना। तो अब वो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, अब हम इसमें क्या कहें, वो तो जो होता था उसको भैया के हमने लिख दिया कि इन इन रूपों में हो जाता है, अकारांत में हो जाता है और आकारांत में नहीं होता है, वो तो वो उसको लिखता है। अब कुछ रूप ऐसे बचे रहते हैं कि जो बहुत रेयर पाए जाते हैं, क्या उनके लिए वो अब बाद में छोड़ देता है। तो न्यायों में भी ऐसा होता है, न्याय में भी ऐसा होता है कि ये जो पंचायत प्रथम सार में 189वीं गाथा में शुद्ध ने से रागा देखा करता आत्मा को लिखा, वो ऐसा ही प्रयोग है कि एक ही जगह पूरे आगम में मिलता है। क्या क्या करें उसको, वो कहीं सेट ही नहीं होता, तो उधारा में हम कैसे सेट करें। और आप हमारी जान खाओगे कि देखो इसमें साहब शुद्ध ने से लिखा है या हमने चंद कहा है, आप कैसे मना कर सकते हो, हम क्या कहेंगे भी? कभी विकल्प से कभी ऐसा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है क्योंकि हमने थोड़ी लिखा है, हमने तो उसी में से निकाल के बनाया है। जैसे जैसे प्रयोग होते हैं उनको निकाल निकाल के हमने बताया है, है? तो आपने क्या, हम क्या करें, हमने बता दिया पंचाध्यायी के नए ये हैं और ये समय सार आदि ग्रंथों के ये हैं, और अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं और इनके पक्ष में ये तर्क है उसके पक्ष में ये तर्क है, तो आप निर्णय करो। हम क्या निर्णय करें, हमने दोनों बता दिए ना जो उपलब्ध होते हैं, क्या आप सुधार दो, सुधार कैसे दें। अब जो तो 400 वर्ष पहले लिखे गए वो सारे देश में फैल गए, वो हमारे सुधारने से क्या सुधरते हैं। हमारी ड्यूटी सिर्फ समझने समझाने की है ये सुधारने बुधारने की नहीं है। अरे आप उसको समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो नहीं समझे, हम क्या कर सकते हैं। लोग बोलते हैं अनशीलन क्या होता है, अनशीलन क्या होता है, अनशीलन ये होता है, समझे। अनशीलन किसे कहते हैं, अनशीलन का अर्थ ये होता है कि उस संदर्भ में कहां कहां कैसे कैसे कथन है और उनकी परस्पर में संधि कैसे है, और कुछ ऐसे बैठेंगे हमसे संधि जमेगी नहीं तो हम कह देंगे ये संधि जमती नहीं है, अभी इसमें आचार्य का क्या आशय रहा वो हमारे ख्याल में नहीं आते। लिखने की कहते हुए थे उसे उपेक्षा ही कर दो ना, उड़ाई तो तुमसे कौन पूछता था, अरे फिर दूसरा उलझेगा, वो दूसरा उलझेगा तो उसे कोई रास्ता तो मिलना चाहिए, हमने जहां तक सोच लिया है उतना तो हम बता जाए उसे, फिर उसके आगे वो निकाल ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकाले तो वो भी यहीं से रुक जाएगा, वो क्या करेंगे। देखो ठीक है, तो व्यवहार में और पर्यावरण में के पर्यायवाची के मामले में अपनी बात चल रही थी, अभी ऐसे बहुत तर्क हैं, वो शायद मैंने लिखे हैं नए चक्र में कि हम व्यवहार नए को पर्यावरण नए नहीं मान सकते, और ये कह रहे हैं दोनों एक ही है, क्योंकि पर्यावरण विद्यार्थी नए में तो पर की व्यवस्था ही नहीं है, पर पर्यावरण आप समझे, पर्यावरण पर्यावरण ये शांति जी पढ़ा ना अनन्य और एक दूसरा दो है पर्याय वाले बोल, दूसरे एक सदगुणी हानि वृद्धि वाला अवशेष नियत, अनन्य और नियत दोनों पर्याय वाले हैं, तो एक तो वो जो आसमान जाति द्रव पर्याय है मनुष्य देव नार की, वो अन्य अन्य उसमें लगता है और अनन्य, और ये जो एक गुण की पर्याय होती है उसमें नियत लगता है, अब दो दो तरह प्रयोग आएंगे, यहां तो उन्हें सूत्र दे दिया है, अब आगे प्रयोग इसी के हिसाब से आएंगे कि नियत का क्या अर्थ है, तो देखें सद्गुणी हानि वृद्धि से रहस है, अनियत का मतलब है सद्गुणी हानि वृद्धि है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे इसका अर्थ करेंगे आप, कि सब नियत है निश्चित है क्रमवत पर्याय है पक्की है, अब कहां की क्रमवत पर्याय कहां की पक्की है, या वो कुछ है ही नहीं। चलो जो व्यवहार में और पर्यार्थिक में को पर्यायवाची ही मानता हो, सुनो उसे उस बात की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है कि एक नए शब्द का अर्थ पर्यार्थिक न करें या व्यवहार न करें, क्योंकि वो तो मानता है हम कुछ लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, अंतर ही नहीं है दोनों में, जो अंतर होगा वो सोचेगा, यही कारण है कि सहज भाव से ही जो भी शब्द ख्याल में आया उसी का प्रयोग कर दिया गया है, ये बहुत शब्द भाषा में ये बात लिखी गई है, अब ये ख्याल में आए, यदि हमारे आचार्य होते न्याय के तो एक एक मिनट में कह देते इतनी अवितारणीय अवरमणीय कुछ भी शब्द का प्रयोग ददप्य सत्य, यदि यह बात है तो फिर नाटक समय सार में सर्वत्र ही कलश टीका का अनुकरण करने वाले बनारसी दास ने यहां भी उनका अनुसरण क्यों नहीं किया। अब एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, अब एक कितनी बड़ी समस्या है कि सब जगह तो उनसे चैटे हुए हैं और यहां उन्होंने अलग प्रयोग किया, अब एक दृष्टि से बहुत साधारण बात है, कैसे मान लो गुरुदेव श्री से अपन चैटे हुए हैं ना, हर कदम पे उनका कोटेशन दे रहे हैं समझा रहे हैं, उनके अनुयायी हैं भगत हैं सब कुछ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और एक आध जगह कोई बात आती है तो अलग खड़े भी दिख सकते हैं कि नहीं, उन सांप्रदायिक लोगों को यह समझ में नहीं आएगी, क्यों पार्वती तो ऐसा वहां हो सकता है ना, उसमें क्या है, कितने गीत गाए उन्होंने उनके तो गीत गाने से क्या मतलब है? देखो सुनो, वाराणसी दास जी तो नाटक समय सार के अंत में प्रशस्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आप कह दो वो दोनों ने अलग अलग लिखे, ये कैसे हो सकता है? और अब इस प्रश्न में क्या बता रहा है कि देखो कितनी प्रशंसा की उनने, वो वहां आगे रखता है जबकि प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है, समझे ना। पांडे राज मल्ल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। तो समझ में आ गया होगा ना सब। कल एक भाई मेरे से पूछते थे कि साहब तुलसीदास इनकी क्या पढ़ने की जरूरत है, कबीरदास तुलसीदास सूरदास आप इनकी सुनाते रहते हो, रामायण आपने इतनी बार पढ़ी है, तो जिंदगी खराब करी है ना है? क्यों ऐसा डायरेक्ट प्रशंसा मेरे से? तो मैंने कहा इस 16वीं शताब्दी में ये लिखा गया, यदि 16वीं शताब्दी की भाषा को तुम नहीं समझोगे तो इसका अर्थ भी नहीं समझ सकते। अब तो तत्कालीन जो समकालीन साहित्य है उसका अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा ऐसा प्रश्न खड़ा करोगे तो आप सारे न्याय शास्त्रीय आचार्यों को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उन्होंने अन्य मत का जो खंडन किया है तो बिना पढ़े के क्या है? किस कीमत पे पढ़ा था मालूम उन लोगों ने? बौद्ध बनके बौद्ध विद्यालय में पढ़ने गए थे अकलंक और निकलंक जान की कीमत में। आप तो कहते आपने पढ़ा क्यों और उन्होंने क्या कीमत चुका के पढ़ा था, समझे? और टोडामल कितने कोटेशन है, ये वेदों में ये लिखा, फलानी जगह ये लिखा, फिर भी नहीं पढ़े हो गए होंगे। वो जनरल सिद्धांत कुछ बगल में रख लिया, उसमें देख देख लिया, वहां तो दफ्तर ऐसे कुछ थे ही नहीं। आज के कह सकते हो कि डॉक्टर भारत ने धवला नहीं पड़ा होगा, क्यों? ये कोटेशन तो निकाल लिए होंगे जिन्होंने सिद्धांत को। अरे हमसे वो कितने महान थे इसकी कल्पना आप करो, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको क्यों पढ़ ली, वो कैसी पढ़ ली, क्या पढ़ ली, एक मिनट में जिंदगी खराब कर दी हमने, तुम्हारी सार्थक हो गई दुकान में बैठ बैठ के धंधा कर करके तुम्हारी दुकान सार्थक हो गई, क्यों? फिर हमने बर्बाद कर दी जिंदगी। देखो अभी नाटक समय सार किसे कहते हैं आप जानते हैं ना? नाटक समय सार को नहीं जानते? यहां रखा नहीं नाटक समय सार, वो है ना बनारसी दास ने लिखा है, नाटक समय सार नहीं जानते? अरे भैया इसमें जो नाटक समय सार आया है वो बनारसी दास वाला नहीं है, बनारसी दास वाला तो लिखा ही नहीं गया था तब। उसके पहले वो क्या कहते हैं, पांडे राज मल्ल जिन धर्मी और नाटक समय सार के मर्मी। तो कोई नाटक पहले रहा होगा जिसके वो मर्मी थे, बनारसी दास ने तो उनके बाद लिखा है, हो सकता है उनके स्वर्गवास के बाद लिखा हो। तो ये कौन सा नाटक समय सार है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें क्या कहना है नाटक समय सार को हम जानते हैं, इसमें नाटक समय सार लिखा है, इसमें अकल लगाने की जरूरत क्या है? बोलो है कि नहीं है? बोलू है जो आत्मख्याति टीका को अमृत चंद्र ने नाटक का रूप दिया है वो उसको कह रहे हैं, वो है नाटक आत्मख्याति। वे जो कलश हैं वो कलश टीका के टीकाकार है, कलशों के टीकाकार, और उनको नाटक समय सार के मर्मी कह रहे। अब यहां समझ लो नाटक समय सार का अर्थ क्या है, अब आप समझ में आया कितना फर्क पड़ता है। ہم اس کتاب کو سمجھ لیتے جو جب لکھی نہیں گئی تھی, اور پہلے کا ہمیں کوئی ناٹک سمے سار نہیں دکھتا نہیں ہے. ارے ہر ادھکار کے انت میں آتا ہے کہ وہ اسٹیج سے نکل گئے, پھر اسٹیج پہ آ گئے, پھر دونوں مل کے آئے, دونوں الگ ہو کے آئے. آتا کہ نہیں آ رہا آپ نے خیاتی میں, سمجھ میں نہیں آتی یہ ناٹک ہے, جبکہ ناٹک کے سارے تب اس میں ودیمان ہیں. دیکھو جن گرنتھ کی ٹیکا کینی اور بال بودھ سگم کر دینی, انہوں نے اس گرنتھ کی ٹیکا, وہ کلش ٹیکا کو ہی وہ ناٹک سمے سار کا ٹیکا مان رہے ہیں. وہ کلشوں کو ناٹک مان رہے ہیں ایک طریقے سے. اب دیکھیے اس کا کتنا پرچار ہوا تھا, اس سے انداز لگاؤ آپ. ایبدی بودھ بچن کا پھیلی سمے پائے ادھیاتم شیلی, اس کی وجہ سے وہ بودھ بچن کا مانے بال بودھ بچن کا مانے سرل بچن کا پھیلی, تو سمے سار کے ادھیاتم کی شیلیاں سمے پا کر ادھیاتم کی شیلیاں گاؤں گاؤں میں بنی, اس کی وجہ سے گاؤں گاؤں میں گوشتیاں چلنے لگ گئی اور ان میں وہ پڑھا جانے لگ گیا. شیلی سمجھتے ہیں, یہ راجستھان کا اور ادھر سے یہ کا پرانا شبد ہے کہ فلانی شیلی جو آج کل بولتے ہیں, فلانا مندر, فلانا ٹرسٹ, فلانی کمیٹی, پہلے وہ سب شیلیاں ہوا کرتی تھیں, اور وہ ادھیاتم پریمیوں کی شیلیاں جو ہمیشہ سوادھیائے کیا کرتی تھی مل کے بیٹھ کر کے, تو اسے ادھیاتم شیلی کہتے تھے. پرگتی جگ ماں ہی جن بانی, انہیں بنارسی داس کی دشتی میں کلش ٹیکا کا کتنا مہتو ہے. آپ دیکھیے آپ یہ چھند میں نے ادھرت کیے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے آکرانت تھے وہ کہ جو کچھ ہمارا سمے سار ابھی دکھائی دیتا ہے سولہویں شتابدی میں, وہ سب بال کلش ٹیکا کا پرنام ہے. جگما ہی جنوانی, میں نے جنوانی پرگٹ ہوگی, جیسے آپ کہتے ہیں گرودیو کے پرتاپ سے آج گھر گھر میں سمے سار کی چرچا ہونے لگی. وہ پوزیشن تھی پانڈے راجمن جی کی, گھر گھر ناٹک کتھا بخانی, ہر مندر میں اور شیلی میں نہیں, گھر گھر میں سمے سار ناٹک کی کہانی چلنے لگی. کیا گھر گھر ناٹک کتھا بخانی اور ناٹک سمے سار ہت جی کا اور سگم روپ راجملی جی کا, یہ راجمل جی کی دیپتکا ہے. اور کبد بد رچنا جو ہوئی بھاشا گرند پڑے سب کوئی, تب بناسی داس کے من میں وکلپ آیا اور ان کے وہی پانچ ساتھی تھے, ان کے نام دیے ہوئے ہیں بھگوتی داس, بھیا بھگوتی داس اور کنور پال, ایسے نام دیے, ایک پاتنی بھی تھے ان میں پانچ, اسی نے وہ نام دیے ہیں پانچ, چترفج ایک چترفج تھے. تب بنارسی من مہی آنی کیجے تو پرگتے جن بانی, اس نے ایسا بھی لکھا ان پانچوں جنوں نے میرے سے کہا کہ تم اس کو کوتا بدھ کر دو تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی. تب بنارسی من مہ آنی کیجے تو پرگتے جن بانی, وہ پنچ پرش کی آگیا لینی. اب پانچ ان کے تو ساتھی پانچ تھے, اب انہوں نے پنچوں کی آگیا لی تھی کہ میں بناؤں, اب تم نے تو آگیا لی نہیں کہ تم سمے سار کی ٹیکا لگاؤ پنچوں کی, بناسی داس نے پنچوں کی آگیا لی تھی. ارے انہوں نے پنچ پرس بھی لی تھی, ہم نے دس پرس بھی لی, تو پانچ کے نام دیے انہوں نے, ان کے ساتھی تھے. پنچ پرس کی آگیا لینی اور کبت بد کی رچنا کینی, اس طرح یہ ناٹک سمے سار کا جنم ہوا ہے. بے اس چند سے اس لیے لکھے ہیں کہ وہ بنارسی داس کے ہردے میں راجمل جی کے پرتی کیا استھان تھا. آپ سمجھ رہے, اکت چھندوں سے اسپشٹ ہی ہے کہ بنارسی داس کے ناٹک سمے سار کا مکھ آدھار راجملی کلش ٹیکا ہی ہے. ایسی استھتی میں یہ پرشن اٹھنا اتنت سوابھاوک ہی ہے کہ اس چھند کے ارتھ کرنے میں بنارسی داس جی نے کلش ٹیکا کار का अनुसरण क्यों नहीं किया। ये जो छंद है इसमें उन्होंने वो कलश टीका का वो प्रकरण दिव्यार सिंह ने पदार सिंह ने क्यों नहीं लिखा, निश्चय व्यवहार क्यों लिखा। अब ये यहां प्रश्न खत्म हुआ है, वहां से ऊपर प्रश्न लिखा है ना, ये पूरा प्रश्न है। उत्तर भाई ऐसे 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 कठिन प्रश्न अपने पास क्यों रखते हो कि उत्तर नहीं आया तो अरे नहीं आया तो उत्तर दिमाग में है तब लिखे जाते हैं। क्यों नहीं आएगा तो भी हम प्रश्न तो लिखेंगे फिर छोड़ देंगे, हमारी समझ में नहीं आया क्यों लिखा, लेकिन लिखा है बस, समझिए ना। अध्यात्म प्रेमी मुक्ति समाज इस बात से अपरिचित नहीं है कि आचार्य गुंद गुंद के प्रमुख ग्रंथ समय सार और नियम सार में निश्चय व्यवहार नहीं की मुख्यता से कथन है और प्रवचन सार और पंचाशी कार्य में दिव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं की मुख्यता से कथन किया गया है। ये अपने अपने भूमिका में लिखा प्रस्तावना है ना इसकी, कुंद कुंद के पांच ग्रंथों के बारे में लिखा के अष्टपावर तो उनका अनुशासन का ग्रंथ था, हम भी अनुशासक प्रशासक थे ना, आचार्यत्व का ग्रंथ था, आदेश देना ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो। और अब समय सार और नियम सार की जो टीकाएं लिखी गई हैं उनमें सब निश्चय व्यवहार आएगा और प्रवचन सार में देखो तो दिव्यार्थिक पर्यार्थक आएगा, पंचाशी काल में देखो दिव्यार्थिक पर्यार्थक गाथाएं भी रब्य तीर नहीं ने। तो कुंद कुंद में दोनों शैलियों के जनक हैं। अब आपको शैली पहचाननी पड़ेगी, प्रवचन सार पढ़ोगे तो आपको दिव्यार्थिक पर्यार्थक नए वाली शैली ध्यान में रखनी पड़ेगी और समय सार पढ़ोगे तो निश्चय व्यवहार वाली शैली ध्यान में रखना पड़ेगी। इसको बोलते हैं आपने कुंद कुंद पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जो बोलते हैं ना क्या 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 है कुंद कुंद पढ़ा क्या नहीं। देखो लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर ही बनारसी दास जी ने यहां निश्चय व्यवहार नियमों का प्रयोग करना उपयुक्त समझा। माने बनारसी दास जी को ये ख्याल में आ गई थी कि समय सार में तो हर जगह निश्चय व्यवहार है, शुद्ध नियम बयानी ही शुद्ध ने जानो उसमें निश्चय व्यवहार जानो, निश्चय ने भी भूतार्थ है व्यवहार ने भी भूतार्थ है, दिव्यार्थ की बात ही नहीं कर रहे। जिस समय सार की टीका लिख रहे हैं ख्याल में आई ना, अब बनारसी दास जी की पकड़ में आ गई, राजवंश जी की नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करें इसमें। वे गुरु हो तो गुरु हो, वे चेले हो तो चेले हो, पर हम तो अपने हमारे समझ में दिवाई वो लिख रहे हैं, आप लगाओ माथा दूसरी समझो, समझे। अब एक कारण तो ये हो सकता है और दूसरा यह भी हो सकता है देखो कि पांडे राजमल जी के समान उनकी दृष्टि में भी व्यवहार में और पदार्थ सिंह में एकाशवासी ही हूं, दोनों ही गुरु चेले एक से ही हूं, एक आध बात यह तो क्या है वो लिखा गया, तो छंद में वो बैठ गया तो वो लिख दो क्या इस कारण उन्होंने इस पर विशेष ध्यान ही ना दिया हो और सहज छंदानुरोध से निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया हो। जो भी हो मूल बात यह है कि दोनों ही अर्थ सही हैं और प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णता घटित भी हो सकते हैं तथा आत्मख्याति के कलश के भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ हैं। माने इसमें उत्तर सिर्फ संभावना के आधार पर दिए हैं, फिर भी इतना बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि यदि तुम वो सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकते हो तो प्रश्न खड़ा नहीं करते ना, क्यों नहीं करते, हमने जितना सोचा है वो तो पहुंच जाए तुम तक, इतना रास्ता तो तुम्हें पार नहीं करना पड़े। अब इससे आगे पे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं ना तो एक निश्चित तीर तक पहुंचा देते हैं, तो आगे की शोध उसके आगे होती है, हर एक आदमी जीरो से शुरू थोड़ी करता है, ने? तो जितना काम हो गया उतना तक हम पहुंचा दें। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने दोनों में से किसी भी नए के नाम का उल्लेख नहीं किया, वो तो अपने कुंद कुंद की लैन पे रहे, एक नए और दूसरा नए, एक नए और दूसरे नए से ही काम चला जाए। उन्होंने तो सभी 22 छंदों में एक नयका पक्ष की आत्मा बंधा है और दूसरे नयका पक्ष से आत्मा अबंध है। इस प्रकार एक नए और दूसरे नए शब्दों से ही काम चला लिया है। इस प्रकरण में आपने सबके मत तो बताए, पर आपका मत क्या है यह नहीं बताया। अब आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते थे ये सब, लेकिन पढ़ते नहीं है ना, इसलिए पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। अरे भाई, हमारा क्या मत है? हमारा मत तो वही है जो आचार्यों का है। समय साथ 141वीं गाथा में इसी बात को बताने के लिए शुद्ध नय और व्यवहार नय का प्रयोग किया है, और एक कलश भी 142वीं गाथा के तत्काल बाद आए हैं, तो प्रकरण भी वही चल रहा है। इस कारण मेरा बल तो निश्चय व्यवहार की ओर ही जाता है। अकेली कलश टीका को छोड़कर अन्यत्र लगभग सभी जगह निश्चय व्यवहार नयों का ही प्रयोग है। अब आज लिख दिया ना, अपना मत भी लिख दिया अत्यंत मर्यादा पूर्वक है कि जिस गाथा पर जो कलश लिखे गए उसमें तो देखो, और आगे पीछे जो गाथाएं आ रही हैं क्यों, तो वो वहां उनमें निश्चय व्यवहार की चर्चा है कि दिव्यार्थ पदार्थ की चर्चा है। तो प्रकरण के हिसाब से भी तो अर्थ किया जाता है। नयों के प्रकरण में भी पांडे राजमल जी की धारा आज तक प्राप्त आगम अध्यात्म धारा से कुछ अलग हटकर ही है, उसी की छाया यहां भी आ गई लगती है। इन सब अर्थ तो आपकी समझ में आते ही होंगे। दूसरे और तीसरे बिंदु, अब निकालो दूसरे तीसरे बिंदु कहां है भैया, कौन से हैं? पीछे लिखे ना तीन, ये पहले बिंदु के बारे में चर्चा चल रही थी। कहां गया हमारा दो पेज पीछे, पेज नंबर 241 पर तीन बिंदु है ना नीचे, कि हम तो कभी के भूल गए हैं। बात उन्हीं की चल रही है भाई है? दूसरे और तीसरे बिंदु के संदर्भ में भी दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम तो यह कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है, और दूसरा यह कि वस्तु का समय स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा नया पक्षातीत रहते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, क्यों अच्छी तरह पढ़ लो, फिर पूछता हूं मैं अभी किसी से भी खड़ा कर दिया। देखो यहां लिखा है कि नए पक्षातीत हो जाता है आत्मा, तो अभी ये दो मत चलते हैं समाज में। पहला मत जो ज्यादा प्रचलित है लोग मानते हैं, कौन सा, कि जब वो अनुभव किया ना, आत्मा शुद्ध उपयोग में गया, तब नए पक्षातीत हो गया और फिर नयों के पक्ष में आ जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि एक तरह समय दर्शन हो गया और फिर वो छूटा नहीं, तो युद्ध के काल में भी वो नए पक्षातीत ही रहता है। ये है, ये प्रश्न है। फिर पढ़ते हैं, देखो दूसरे और तीसरे बिंदु के संदर्भ में भी दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम तो यह कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है, और दूसरा यह कि वस्तु के सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा ही नए पक्षातीत हैं। अब उत्तर, जहां पक्ष का अर्थ सुनो तत्संबंधी विकल्प लिया जाए वहां प्रथम अर्थ घटित होगा, और जहां पक्ष का अर्थ पक्षपात लिया जाए अथवा एक पक्ष के प्रतिपादन में अपर पक्ष का सर्वथा निषेध अभीष्ट हो वहां दूसरा अर्थ घटित होगा। मैंने कई प्रवचनों में कही है ये बात, लोगों का ध्यान नहीं जाता तो मैं क्या करूं, कि वो जब तक वो सम्मान दर्शन कायम है तब तक वो नए पक्षातीत ही है। विकल्प खड़ा हो जाने से नए पक्ष नहीं हो जाता है, अकेला विकल्प ही नहीं है पक्ष, उसका उसके बारे में पक्ष होना चाहिए ना, मतलब पक्षपात। तो इसको मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमको तो भाई एक प्रोफेसर चाहिए और उसकी नियुक्ति जब होगी जब वो 10 साल एमए क्लासों को पढ़ाने का अनुभवी होगा। क्यों होता है इन यूनिवर्सिटियों में आपने सुना होगा कि नहीं, हमें तो अनुभवी आदमी चाहिए, ये डिग्री भी चाहिए। पहले तो ये भी था कि डीलेट करना हो तो वो पीएचडी तो होना ही चाहिए, लेकिन उसे 10 साल तक किसी विश्वविद्यालय के कॉलेज में एमए क्लासों को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो डीलिट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। उसे पहले कोई नहीं कर सकता। तो अनुभवी का क्या अर्थ है? क्या वो 24 घंटा अनुभव करता रहता है? उसने साल में सिर्फ 100 पीरियड लिए, वो अनुभवी कैसे हो गया? जिंदगी मेरे को जिंदगी भर का अनुभव है। कहां जिंदगी भर का अनुभव है? सात पीरियड 100 पीरियड लेना पड़ते हैं बस खत्म। साल 365 दिन में 100 पीरियड पढ़ा। पीरियड माने एक घंटा का नहीं, वो 45-40 मिनट का, और उसमें वो 25 मिनट पढ़ाएगा और कितने उसमें भी गोल कर देगा और झूठी हाथ ही लगा देगा, और फिर उसको भी 10 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है कि नहीं? और नहीं तो घंटे गिनो, ऐसा 72 घंटे का एक्सपीरियंस है। मुझे प्रश्न करने का कितने घंटे बरस का एक्सपीरियंस है बोलो। कहा मैं 50 साल से कर रहा हूं, मैं 60 साल से कर रहा हूं प्रश्न, तो 60 साल का अनुभव भी हो गया कि 60 साल में कितने गिने? उनके घंटे बनाओ, फिर घंटों के दिन बनाओ, फिर दिनों के महीने बनाओ, क्यों फिर महीनों के वर्ष बनाओ और फिर गिनो। तो दो ही तरह का चलता है कि नहीं चलता है? अंत मुहूर्त लगातार यदि आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो बाहुबली का और ऋषभदेव का, बाहुबली का 1 वर्ष तक और ऋषभदेव का 1000 वर्ष तक क्या उपयोग आत्मा में गया ही नहीं था? कि गया तो था लेकिन वहां लगातार टिका नहीं। एक जगह तो अंतर्मुहूर्त तो वो टिकने की बात है, और आत्मानुभवी तो वेद चौथे गुण स्थान में थे ना, तो वहां पर सर्वा सिद्धि में तब भी थे। तो दोनों अपेक्षाएं लगेंगी, मेरे कहने का मतलब जहां जैसी अपेक्षा हो वहां घटित कर लेना। नए पक्षातीत माने विकल्पातीत, जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित्र निर्विकल्प दशा का ही नाम है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगों को ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है। सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में ही विकल्पातीत और नए पक्षातीत कहा जाता है। दूसरे दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नए पक्षातीत हैं। ये दूसरा अर्थ है, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते, वे दोनों को सही रूप में जानते हैं और दोनों का यथायोग उपयोग करते हैं, अतः वे सदा ही नए पक्षातीत हैं। अब भैया ये तो अब अर्थ तुम अपनी तरफ से कर दोगे तो चलेगा नहीं, और मोक्ष में तो नहीं चलेगा जब तक गुरुदेव की सील नहीं लगेगी। इसलिए मैंने गुरुदेव का वो कोटेशन निकाल के आपके सामने रखा है, जो आप 100 सर के नहीं निकाल सकते थे, आपका उपयोग ही नहीं जाता इतना गहराई से। कह जाए ना कि देखो गुरुदेव भी जो मैं कह रहा हूं वो बात मानते थे। देखो मैं एक हूं अवध हूं इत्यादि प्रकार की जो वृत्ति उठती है, यही है ना, वह भी एक नए का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है वही सदा स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। देखो बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं, यहाँ तो एक समय की अवस्था में भी नए पक्ष का विकल्प उठता है, उसका भी त्याग की भावना की बात है ना। जब तक वृत्त तपादि सुवराग का पक्ष रहता है तब तक चित्त में क्षोभ रहता है, यह बात तो है ही, परंतु मैं शुद्ध हूँ, अभेद एक रूप चिद्रूप हूँ, ये तो नहीं, ये तो शुद्ध नए का पक्ष है, उसका पक्ष नहीं है। ऐसा निस्संबंधी नए पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है तब तक भी चित्त में क्षोभ नहीं मिटता। बोलो, ये भी क्षोभ है भाई साहब। और क्षोभ देश को बोलते हैं, वो है क्षोभ ही राग देश को बोलते हैं ना। ये नए पक्ष के विकल्प भी क्षोभ है, आकुलता है। जब नए का सर्व पक्षपात मिट जाता है तब वीतराग दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, वह अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में आता है। देखो चौथे गुणस्थान में भी सम्मा दर्शन होता है। अब एक पक्ष एक बात हो गई है, दूसरी बात वहां श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प और राग रहित वीतरागी परिणाम ही है। वहां श्रद्धा अपेक्षा, देखो ये श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प है, युद्ध के काल में भी निर्विकल्प है। तो चार संबंधी विकल्प को विकल्प तो माने ही नहीं, तो श्रद्धा संबंधी बात है, सात संबंधी विकल्प हो रहे होंगे लड़ने के, है ना। ऐसा नहीं समझना कि जीव ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में भी वीतराग दशा प्राप्त करता है। भाई सम्मा दर्शन स्वयं वीतरागी दशा है, दोनों बातें लिखेंगे नहीं। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, चिद्रूप हूं, अबद्ध हूं, ऐसा जो नए विकल्प अर्थात राग की लगन है, जब वह भी छूट जाती है तब वीतरागी दशा होकर स्वरूप का सिद्धांत निर्विकल्प होता है। भाई यह स्वदया की बात है, आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है, राग या विकल्प आत्मा का जीवन ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु यही है, पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल्प अनुभव होता है वह धर्म है, यह आत्मधर्म की बात है। तत्ववेदी धर्मी जीव चित्त स्वरूप को चित्त स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है, एक समय का अभी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप से ही अनुभव में आता है। देखो प्रारंभ में वस्तु रूप का निर्णय करते समय देखो नए के विकल्प आते हैं ही हैं और आना ही चाहिए, परंतु जो पुरुष उसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेक थी अब ज्ञायक में एक मेक होने लगी, बस इसी का नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही अनुभव में आता है। ये गुरुदेव का कोटेशन हुआ, अब अपना निष्कर्ष छोटा सा है वो कल पढ़ेंगे।